अगर बच्चन साहब की पत्नी की बात करें तो सबसे पहले ख्याल आता है तेजी बच्चन के नाम का। लेकिन ये बात कम ही सामने आती है कि तेजी जी से शादी से पहले बच्चन साहब कई साल तक विधुर रहे थे। और आज हम बात करेंगे उनकी पहली पत्नी श्यामा की। एपिसोड 11 में हमने बात की थी चंपा की, जिससे बच्चन साहब को बहुत जुड़ाव था, लेकिन चंपा की अकस्मात मृत्यु के बाद वो जैसे दुख के सागर में डूब गए। इसका असर उनकी सेहत और उनकी पढ़ाई पर भी हो रहा था। तो जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कपन की हर समस्या का इलाज शादी होता है, परिवार वालों ने सोचा लड़के की शादी कर दी जाए। उस लड़कपन और जवानी के शुरू की उलझनों को क्या बताऊं, भूलने का नाम वे लेती नहीं है, मैं उन्हें कितना भुलाऊं। साल था 1926, मई का महीना। बच्चन जी तब 19 साल के थे और श्यामा 14 साल की। उनके सामने बिल्कुल बच्ची सी, भोली, नन्ही, नादान, अनजान, हंसमुख, किसी मधुवन की गुलाब की कली, नवल कलिका जैसी, जिसमें ना कभी पतझड़ आया हो ना जिसने कभी कांटों से निकटता ही जानी हो। जहां चंपा वृक्ष परी जैसी लगी थी, श्यामा लगी शैली की स्काईलार्क सी, लाइक एन अनबॉडीड जॉय हूज रेस इज जस्ट बिगन। बच्चन जी जिस तरह के अनुभवों से निकलकर आए थे, वहां से वो श्यामा को वात्सल्य तो दे सकते थे, प्रेम नहीं। तो वो भी उस बच्ची के साथ बच्चे बन गए, ये सोच के कि जब बड़ी होगी तो शायद प्रेम भी हो जाएगा। जैसे एक लोक कहावत है, छोटी से बड़ी हो बे, धीरज धरो राजा। और जैसे मधुशाला कहती है, उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर से है हाला, उस हाला से चाव मुझे जो दूर अधर से है हाला। प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरमानों में, प्यार नहीं पा जाने में है पाने के अरमानों में, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला, पा जाता तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। श्यामा के खुश मिजाज स्वभाव के कारण बच्चन साहब श्यामा को जॉय कहकर बुलाते थे और वो बच्चन साहब को कहती थी सफरिंग। सफरिंग क्यों? क्योंकि एक तो अपनी आर्थिक स्थिति से दुखी रहते थे और शायद श्यामा ने उनके अंदर छिपे कवि को भी पहचान लिया था। कवि तो साकार रूप में वेदना ही होता है। जैसे किसी ने कहा है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ऐसे सरल और स्वच्छंद स्वभाव पर सुमित्रानंदन पंत जी की कुछ पंक्तियां याद करते हैं। उसके उस सरल पने से मैंने था हृदय सजाया, नित नए मधुर गीतों से उसका उर था उकसाया, उस कल्पनाओं की कल्पलता को था मैंने अपनाया, बहु नवल भावनाओं का उसमें पराग था पाया, मंद हास सा उसके मृदु अधरों पर जो था मंडराया, और उसकी सुखद सुरभि से प्रतिनिशी समीप खिंच आया। यानी उसकी खुशनुमा खुशबू से हर रात करीब से करीब तर आता गया। बहरहाल श्यामा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर साबित हुई, यहां तक कि बच्चन जी की पढ़ाई का खर्च भी उसने अपने जेवरों के पैसे से दिया और उनकी कविताओं के सफर में भी बड़ा साथ दिया। यहां तक कि जब भी बीमार होती तो अपने मायके चली जाती कि बच्चन जी परेशान ना हो। बीमारी थी टीबी की, जिसका कोई अच्छा इलाज भी उस वक्त उपलब्ध नहीं था, और करीब 10 साल की लड़ाई के बाद श्यामा की मृत्यु हो गई। लेकिन वो इतनी खुश मिजाज थी कि वो अपनी मृत्युशैया पर भी हंसती रही। बच्चन साहब कहते हैं, श्यामा वाकई में मेरी अर्धांगिनी थी। जैसे आधी विजय विजय नहीं होती, वैसे ही आधी पराजय भी कोई पराजय होती है। उसकी मृत्यु में आधा मैं भी मर गया था, लेकिन मेरे जीवन में आधा वह भी जी रही है। और ठीक मृत्यु के दिन उसने कहा था, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद रहे। और वो बात उसने अपनी याद बनाए रखने के लिए नहीं कही थी, उसने कहा था इसलिए कि वो ना रहे तो मुझे अपने सूनेपन, अपने खालीपन को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो रहे। सृजन से अधिक डुबाने वाला तो कुछ भी नहीं होता। श्यामा बच्चन साहब को बहुत निकट से ही नहीं, शायद बहुत दूर तक देख गई थी। जब तुझे पहचान पाया, देवता को जान पाया, खींच तुझको ले गया तब काल का आह्वान, यह तेरा करुण अवसान। और उसके प्राणों से अपने प्राणों को मिलाने का पूर्ण अवसर शायद ही कभी आया। प्राण प्राणों से सके मिल, किस तरह दीवार है तन। उसके आखिर तक बने रहे खुश मिजाज और स्वच्छंदता पर बच्चन साहब की भी एक पंक्ति है, मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी, यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। जैसे शुरू में कहा था, श्यामा एक गुलाब की कली जैसी मासूम थी। खिलते हुए तो हर कली मुस्कुराती है, वो किसी अद्भुत गरिमा की ही कली होगी जो मुरझाते समय भी मुस्कुराती रहे। श्यामा ऐसी ही कली थी और वो वक्त शायद मधुशाला की इन पंक्तियों में भी झलकता है। एक समय संतुष्ट बहुत था, पा में थोड़ी सी हाला, भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला। छोटे से इस जग की मेरे स्वर्ग बलाएं लेता था, छोटे से इस जग की मेरे स्वर्ग बलाएं लेता था, विस्तृत जग में हाय गई खो मेरी नन्ही मधुशाला। विस्तृत जग में हाय गई खो मेरी नन्ही मधुशाला। कुछ कविताओं में आने वाले वक्त की झलक होती है। हालांकि ये पंक्तियां तो श्यामा की मृत्यु से पहले लिखी गई थी, लेकिन यहाँ जो शब्द हैं, भोला सा साकी, छोटा सा प्याला, नन्ही मधुशाला, इशारा शायद श्यामा की ओर ही है। भोला सा था मेरा साकी, छोटा सा मेरा प्याला। मेरा नाम अरिसुदन है। हिंदी कविताओं की इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मधुशाला की और बच्चन साहब के जीवन से जुड़े कुछ किस्से कहानियों की। तो चलिए उस सिलसिले को फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कुछ और किस्से कहानियां। ज्ञात हुआ यम आने को है, ज्ञात हुआ यम आने को है, ले अपनी काली हाला, पंडित अपनी पोथी भूला, साधु भूल गया माला। पंडित अपनी पोथी भूला, साधु भूल गया माला। यानी जैसे ही पता चला कि यम आ रहा है तो पंडित अपनी पोथी भूल गया, साधु अपनी माला भूल गया। और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला। और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मर करके भी पीने वाला मधुशाला। किंतु न भूला मर करके भी पीने वाला मधुशाला। यानी जब मौत सामने होती है तो हर कोई सब कुछ भूल जाता है, लेकिन पीने वाला मर करके भी मधुशाला नहीं भूल सकता। बच्चन साहब के गुरु होते थे प्रोफेसर अमरनाथ झा। उन्होंने बच्चन साहब के कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी में नौकरी तक काफी मार्गदर्शन किया। एक तरह से बच्चन साहब के यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनने में झा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। अब झा साहब बड़े ही रोचक व्यक्तित्व वाले इंसान थे, बड़े ही अनुशासित, टाइम टेबल के पक्के, सब कुछ एक नियत समय पर करने वाले, सब सामान एक फिक्स जगह रखने वाले, मतलब बोरियत की हद तक अनुशासित। आजकल इसी को शायद OCD कहते हैं। वो अपने जीवन ही नहीं, मृत्यु के बारे में भी इतना पर्टिकुलर थे कि अपनी मृत्यु से पहले चंदन की लकड़ियां खरीदवा दी और वसीयत में लिखा कि उनकी चिता को चंदन की लकड़ियों पर जलाया जाए। और हुआ भी यही। देख रहा हूं अपने आगे कब से माणिक सी हाला, देख रहा हूं अपने आगे कब से माणिक सी हाला, देख रहा हूं अपने आगे कब से कंचन का प्याला। देख रहा हूं अपने आगे कब से कंचन का प्याला। बस अब पाया, बस अब पाया, कह कह कब से दौड़ रहा इसके पीछे, किंतु रही है दूर क्षितिज सी मुझसे मेरी मधुशाला, किंतु रही है दूर क्षितिज सी मुझसे मेरी मधुशाला। 1937 के आसपास की बात है, जब बच्चन साहब शिक्षक की नौकरी के लिए जगह जगह साक्षात्कार दे रहे थे, तब तक वो अपना कवि नाम असली नाम से अलग रखते थे। लेकिन उनके इंटरव्यू लेने वाले लोग जब उनकी योग्यताओं से प्रभावित हो जाते थे, जैसे ही उनको यह पता लगता कि हरिवंश राय नाम का आदमी ही बच्चन है, तो लोगों का माथा ठनक जाता। पहले ही नौकरी में जात पात का इतना रोल होता था, अब और एक नई मुसीबत। उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते, आप मदिरा पीते हैं या नहीं, कितनी पीते हैं, और बच्चन साहब मन ही मन कहते, बुरा हो ज्ञान प्रकाश जौहरी का, उसने दो चार पैग होठों से लगाकर ईमानदारी से ना पीने की कसम खाने लायक भी नहीं छोड़ा। फिलहाल बच्चन साहब से कहा जाता, आपको नौकरी दी जाएगी तो आप वादा करेंगे कि आप मदिरा पीना छोड़ देंगे। अरे भाई, मदिरा तो ये पीते ही नहीं थे। खैर, जनता ये ही कहती रहती कि यार ये शायर तो अच्छा है, लेकिन टीचर बड़ा बुरा होगा। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता। अब कई भाषाओं की खास बात है, एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग में अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे ये एक कहावत है, समुझ ही खग खग ही के भाषा, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि खग ही खग की भाषा समझता है, खग यानी पक्षी, और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि खग खग की ही भाषा समझता है। अब अगली पंक्तियों में देखिए, आ आगे कह कर कर पीछे कर लेती साकी बाला। शब्दों का खूबसूरत खेल है यहां, कह कर कर पीछे कर। हम इंग्लिश की बात करते हैं कि जैसे कट कट होता है, पुट पट क्यों नहीं हो सकता? अब हिंदी में करके ही कितने अर्थ हैं, एक कर तो हाथ हो गया और एक कर करने वाला, और वहीं एक कर सूर्य चंद्रमा की किरण भी है, और एक कर टैक्स भी है, जैसे आयकर यानी इनकम टैक्स। और टैक्स वाला कर तो कितनी तरह का होता है, बिक्री कर, खरीद कर, ये कर, वो कर, उस कर की बात ना ही करें तो अच्छा है। आ आगे कह कर कर पीछे कर लेती साकी बाला, होठ लगाने को कहकर हर बार हटा लेती प्याला। होठ लगाने को कहकर हर बार हटा लेती प्याला, नहीं मुझे मालूम कहां तक यह मुझको ले जाएगी, बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटती मधुशाला। बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटती मधुशाला। अब जैसे पहले लॉकडाउन खुलने का किस्सा चल रहा था, आज खुला कल खुला, अब वैसे ही वैक्सीन का किस्सा चल रहा है, आज आएगी अगले महीने आएगी, फाइजर की आएगी, रशिया से आएगी। ये करते करते पूरा साल 2020 ही निकल गया। और मजेदार बात देखिए, जिस दिन सरकार ने मदिरा की दुकान खोलने की घोषणा की, क्या लंबी कतारें लग गई थी। ये है लोगों का मधुशाला प्रेम। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। अब जब मधुशाला के लिए लाइन लगाने की बात चली है, तो आगे सुनते हैं। हाथों में आने आने में, हाथों में आने आने में, हाय फिसल जाता प्याला, अधरों पर आने आने में, हाय ढुलक जाती हाला। अधरों पर आने आने में, हाय ढुलक जाती हाला, दुनिया वालों आकर मेरी किस्मत की खूबी देखो, रह रह जाती है बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला। रह रह जाती है बस मुझको मिलते मिलते मधुशाला। बच्चन साहब ने कई जगह कहा है कि दुनिया में आए हो तो इसके संघर्षों से गुजरे बिना इसका क्या मजा। आप कितनी भी योजनाएं बना लें, कई बार यूनिवर्स अपने मनोरंजन के लिए अड़ंगे लगा ही देता है। इसी साल को देख लो, किसी को रूस जाना था, किसी को जापान, हम तो हिमालय का एक चक्कर लगाना चाह रहे थे, नौबत ये आ गई कि अब गली के नुक्कड़ तक जाके गोलगप्पे खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। है कहाँ वो ब्राह्मण जिसने कहा था कि ये साल अच्छा है। चलिए फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे कि कैसे ज्ञान प्रकाश जौहरी ने बच्चन साहब को पहली बार शराब पिलाई और आचार्य रजनीश, ओशो और बच्चन साहब की मधुशाला के बीच में क्या रिश्ता था, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में अगले साल। अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ खुश रहें, गुनगुनाते रहें, चाय कॉफी पीते रहें।